रूपाली ने चुपके से जाकर उस कमरे का दरवाज़ा बाहर से खोल दिया जिसमें निक और फुलवा रात को मौजूद थे। उधर निक के पास ज़ैन का मैसेज आया कि उसने फुलवा की आईडी और यहाँ से निकलने के इंतज़ाम कर लिए हैं। निक ने फुलवा से कहा, फुलवा मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई तुमसे मेरे बारे में पूछे तो तुम ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूँ। फुलवा ने एक मासूम से मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन आप तो अच्छे हो भैया। सबसे पहले तो मुझे भैया बुलाना बंद करो, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए कि कल रात यहाँ पर क्या हुआ था। कोई तुमसे बात करने की कोशिश भी करे तो तुम जोर जोर से रोना शुरू कर देना और किसी को कुछ मत कहना। निक फुलवा को सब कुछ समझा रहा था। फुलवा ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है भैया। निक फुलवा को सब कुछ समझाकर रूपाली और सुनहरी के पास गया। रूपाली ने उसे देखकर आंख मारी और उसके पास आकर धीरे से कहा, और बताइए साहब, कल की रात कैसी भी थी? कल रात की याद आते ही निक को वो सब फिर याद आने लगे जो उसने प्रियल के साथ बिताए थे। उनमें प्यार था तो मीठी नोकझोंक भी। वो सब सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बहुत ही अच्छी और इतनी अच्छी बीती थी कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, उसने खोए हुए स्वर में कहा। हाँ, आपने दिल खोलकर पैसे लगाए थे, उसका कुछ तो फायदा होगा ही ना? निक ने कहा, फायदे से मुझे याद आया कि लंदन से मेरे एक दोस्त का फोन आया था, उसे फुलवा पसंद आ गई है तो मैं उसे लंदन भेज रहा हूँ। निक रूपाली को सब कुछ बता रहा था कि तभी सुनहरी वहां आई और उसने उसकी बात सुन ली। सुनहरी ने चौंकते हुए कहा, आप ऐसा नहीं कर सकते साहब, फुलवा जन्नत बाजार की है और आप उसे जन्नत बाजार से बाहर नहीं ले जा सकते। आपको उसके साथ जितने मजे करने हैं वो जन्नत बाजार में रहकर ही करने होंगे। ये अपने रूल्स अपने पास ही रखना। एक बार जब किसी लड़की को कोई खरीद लेता है वो उसकी हो जाती है। मुझे क्या बेवकूफ समझती हो तुम दोनों? उस छोटी सी लड़की के लिए मैंने 3 गुना ज्यादा पैसे दिए थे। अब मैं उसे लंदन जाऊं या चाइना, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो बीच में टांग बढ़ाने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझे तुम जैसों की टांग काटना अच्छे से आता है। निक ने पूरे एटीट्यूड और सख्ती से जवाब दिया, मानो वो ये काम काफी बरसों से कर रहा हो और उसे इन सबका बहुत अनुभव हो। रूपाली ने उसका गुस्सा देखकर माहौल को संभालने की कोशिश की और कहा, अरे साहब, आप तो गुस्सा हो गए, आपको उसे जहां जाना है ले जाइए, लेकिन थोड़ा हमारा भी तो सोचिए, हमें भी कभी लंदन अमेरिका घुमाइए ना। निक ने जवाब देते हुए कहा, तुम दोनों बस ऐसे ही मेरी बात मानते रहो, देखना एक दिन तुम दोनों को वर्ल्ड टूर करवाऊंगा मैं। अभी मुझे फुलवा को ले जाना होगा, वो बहुत ड्रामा कर रही है, तो उसे थोड़ा समझाओ। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए साहब, रूपाली ने कहा। ठीक है, लेकिन इस चक्कर में उसको एक छोटी सी खरोच भी नहीं आनी चाहिए, वरना मेरा सारा नुकसान हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, तुम उसे फिर से समझाना है तो समझाओ, वरना रहने दो। निक ने उन्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि अगर फुलवा ने किसी चीज़ के लिए मना किया तो रूपाली उसे मारने से नहीं चूकेगी। सुनहरी ने कहा, ठीक है, मैं देखती हूँ उसे। ज़ैन ने फुलवा के शाम तक जाने के सारे इंतजाम कर लिए थे। जैसा कि निक ने समझाया था, फुलवा ने जोर जोर से रोने का ड्रामा किया। सुनहरी ने फुलवा को झूठे वादे करके निक के साथ भेजने के लिए राजी किया। सुबह के 11 बज रहे थे, निक फुलवा को लेकर जन्नत बाजार से अपने घर की ओर चल दिया। वो निक के घर पहुंचे ही थे कि मीरा बाहर से उन दोनों को देख रही थी। मीरा को फुलवा को देखकर बाहर आकर उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन निक ने इशारे में उसे वहां पर आने से मना कर दिया। निक फुलवा को लेकर घर गया तो प्रियल उसे वहां देखकर बहुत खुशी हुई। फुलवा भागकर प्रियल के गले लग गई और बोली, दीदी आप यहाँ रहती हो, ये कितना अच्छा घर है, अब मैं भी आपके साथ यहीं पर रहूंगी ना। परी ने उसे देखकर कहा, अरे ये बच्ची कौन है, ये तो बहुत प्यारी है, अगर ये हमारे साथ रहेगी तब तो मजा ही आ जाएगा। नाम क्या है तुम्हारा, जिनी ने पूछा। निक ने कहा, परी और जिनी ये हमारे साथ नहीं रह सकती, उसे मैं डैड के पास यूएसए भेज रहा हूँ, लेकिन उससे पहले प्रियल आओ मेरे साथ, उसका माइंड सेट करते हैं। फुलवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो लोग उसे कहाँ भेजने की बात कर रहे थे। निक और प्रियल फुलवा को समझाने के लिए अंदर रूम में लेकर गए। निक ने अंदर आते ही कहा, सुनो फुलवा, मैं अब किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकता। पिछली बार भी मैंने तुम्हें अपनी तरफ से सबसे सेफ जगह पर भेजा था, लेकिन फिर भी तुम वापस जन्नत बाजार में पहुंच गई। इस बार मैं नहीं चाहता कि वापस वही सब हो। प्रियल ने कहा, फुलवा तुम विश्वास करो, ये भैया तुम्हें जहाँ भेजने की बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे अच्छी जगह होगी। वहाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम एक अच्छे स्कूल जा पाओगी, बड़ी हो पाओगी, अपना करियर बना पाओगी। तो क्या दीदी आप भी आएंगी वहाँ मेरे साथ, फुलवा ने रोते हुए पूछा। निक ने कहा, अभी तो नहीं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारी दीदी को अपने साथ वहाँ जरूर लेकर आऊँगा, और जब हम वहाँ आएंगे तो तुम हमारे साथ ही रहोगी, लेकिन तब तक के लिए हमारी बात मानकर वहाँ जाने के लिए हाँ कर दो। फुलवा रोते हुए फिर से प्रियल से चिपक गई। दीदी आप दोनों मुझे बहुत याद आओगे, प्लीज आप इन भैया को माफ करके इनसे शादी कर लो, ये बहुत अच्छे हैं। फुलवा की बात सुनकर निक और प्रियल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। प्रियल ने कहा, फुलवा मैं तुम्हें पूरा सच तो नहीं बता सकती, लेकिन हम दोनों की शादी हो चुकी है। चलो इसने माना तो सही कि मैं इसका कुछ लगता हूँ, निक ने हंसते हुए कहा। फुलवा ने चौंकते हुए कहा, तो दीदी आप जन्नत बाजार में कैसे पहुंची? भैया आपको वहां से लेने गए थे क्या? आपको किसने बेचा जन्नत बाजार में? निक ने कहा, तुम्हारी इन बातों का जवाब हम जरूर देंगे, लेकिन अभी इसका सही समय नहीं है। थोड़ी देर बाद जैन आता ही होगा तुम्हें लेने के लिए, तब तक तुम प्रियल के साथ जितना टाइम बिताना चाहो तुम बिता सकती हो। चलिए अब आप बाहर जाइए, मुझे इससे बहुत सारी बात करनी है, प्रियल ने कहा। निक ने तुरंत उसके बाद हामी भर दी। प्रियल ने कहा, क्या बात है, आज तो आपने बिल्कुल भी जिद नहीं की। हाँ भैया ने आपको थप्पड़ मारा था ना? अरे भैया नहीं जीजा जी, आप दोनों की शादी हो चुकी है ना, आप मेरी दीदी हो तो ये मेरे जीजा जी हुए, इन्होंने आपको मारा था तो इनसे अब आपको डर लग रहा है, फुलवा ने कहा। निक ने आंखें टेढ़ी कर कहा, फुलवा प्रियल उस बात को भूल चुकी थी, लेकिन तुमने इसे फिर याद दिला दिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों को जो बात करनी है कर लो। निक वहां से बाहर चला गया। प्रियल और फुलवा ने साथ बहुत अच्छा समय बिताया। शाम के 6 बजे के करीब जैन फुलवा को लेकर यूएसए चला गया। निक को और किसी पर भरोसा नहीं होने की वजह से वो चाहता था कि जैन खुद फुलवा को यूएसए छोड़कर आए। फुलवा की सुरक्षित स्थान पर पहुंचने से प्रियल ने भी चैन की सांस ली। फुलवा का सक्सेसफुल रेस्क्यू करने की बधाइयां देने के लिए मिस्टर मुखर्जी खुद निक के घर पर आए हुए थे। प्रियल और निक सहित रॉन, आलिया, एमा और अंकित भी वहीं पर मौजूद थे। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, सच में कैप्टन निक, आपके आने के बाद इस केस में जैसे जान आ गई हो। पिछले 1.5 महीने में आपने जन्नत बाजार की बहुत सी डेट कैंसिल करवाकर इन लड़कियों को जीवन दान सा दिया है, वहीं फुलवा को तो आपने उस जाल से निकाल ही दिया।
निक ने जवाब दिया, आप मुझे अकेले को क्रेडिट मत दीजिए, आप लोग भी कब से इस मिशन में अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। हमने जन्नत बाजार में CCTV इंस्टॉल करवाकर उनके खिलाफ काफी हद तक सबूत इकट्ठे कर दिए हैं। बस कुछ दिनों की बात है, फिर जन्नत बाजार पर ताला लग जाएगा। मैं चाहता हूँ वहाँ पर रहने वाले सभी बच्चे और औरतें एक अच्छी जिंदगी बिताएं। हाँ जरूर, ये सभी एक अच्छी जिंदगी बिताएंगे। बहुत से NGOs इनकी मदद के लिए आगे आए हैं। मैंने ऑलरेडी काफी जगह बात कर रखी है, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी, रॉन ने बताया। अंकित ने कहा, हाँ कोशिश तो यही है कि सबको एक अच्छी जिंदगी दी जा सके और साथ ही रूपाली और सुनहरी को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। वैसे तो एशिया में बहुत सारे रेड लाइट एरियाज हैं, लेकिन जन्नत बाजार उन सबका हेवन है। एक बार जन्नत बाजार खत्म हो गया तो बाकी की छोटी मछलियों को पकड़ते देर नहीं लगेगी, एमा ने कहा। वो लोग आगे इस केस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जबकि प्रियल और आलिया चुपचाप उनकी बात सुन रही थीं। मिस्टर मुखर्जी ने प्रियल की ओर देखकर कहा, क्या हुआ मिसेस शर्मा, आप चुप क्यों हैं? भले ही कैप्टन निक ने इस केस में काफी प्रोग्रेस की है, लेकिन आपने जो कूटनीति दी है वो भी भूली नहीं जा सकती। और क्या थी वो कूटनीति? निक ने हैरानी से पूछा। प्रियल ने कहा, कुछ नहीं, इस मिशन से जुड़े लोग और उनके काम सीक्रेट हैं, तो आप भी अपने काम से मतलब रखिए सर। निक ने कहा, नहीं काम से मतलब रखने से आपका क्या मतलब है, ये भी तो मेरा काम है, मुझे जानना है इस बारे में कि आपने ऐसा क्या किया था कि मिस्टर मुखर्जी आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं। मिस्टर मुखर्जी ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे अरे आप बहस मत कीजिए, चलिए मैं बता देता हूँ। ये मिसेस शर्मा का पहला लीडिंग मिशन है, इस मिशन को लीड करने के लिए वो खुद जन्नत बाजार के अंदर गईं। वाह मिसेस शर्मा, आपने तो बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आप जन्नत बाजार के अंदर चली गईं, जबकि अच्छे से जानती थीं कि वहां पर कुछ भी हो सकता था, निक ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा। उसके बात करने के लहजे से प्रियल को समझ आ रहा था कि वो उसके इस कदम से खुश नहीं था। प्रियल ने कहा, इस मिशन के लिए ये सब तो छोटी सी चीज़ है। अंकित ने कहा, ये तो प्रियल की किस्मत अच्छी रही कि उसके साथ वहां कोई अनहोनी नहीं हुई, वरना जन्नत बाजार में रहकर किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो ये तो हो ही नहीं सकता था। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, आप हमारी मिसेस शर्मा को कम मत आंकी अंकित सर, इस मिशन के लिए उन्होंने हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को जुटाया था, उसके बाद ही उन्होंने जन्नत बाजार में कदम रखा था। उन्होंने सुनहरी के बारे में एक एक बात पता लगाई, सुनहरी की छोटी बहन का नाम भी जन्नत ही था और वो बोल नहीं सकती थी, बस तभी मिसेस शर्मा ने अपना नाम जन्नत रखा और उन्होंने साइन लैंग्वेज सीखी। सुनहरी जब भी जन्नत को देखती तो उसे अपनी छोटी बहन की याद आ जाती, बस तभी वो जन्नत को इस धंधे में उतारने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। स्मार्ट मूव प्रियल, इस बारे में हमने कभी नहीं सोचा था कि सुनहरी जन्नत से काम क्यों नहीं करवाती है, वो जन्नत के साथ काफी अच्छे से पेश आती थी, हमें लगा उसका तुम्हारे साथ कुछ कनेक्शन होगा इस वजह से वो ऐसा कर रही है, एमा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। मिस्टर मुखर्जी ने कहा, और तो और ये मिसेस शर्मा का ही प्लान था कि उन्होंने सुनहरी को एक बाबा के जाल में फंसाया, उन्होंने सुनहरी और जन्नत के बाजार से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके बाबा से भविष्यवाणी के रूप में कहलवाई, जिससे सुनहरी को लगा कि वो बाबा उसके लिए लकी है और वो उस हिसाब से ही काम करने लगी। सुनहरी जिस बाबा के पास जाती है वो आदमी कोई और नहीं, हमारी ही पुलिस फोर्स का एक ऑफिसर है। प्रियल की स्ट्रैटेजी से वो सभी काफी इम्प्रेस हुए। उसने सच में इस प्रोजेक्ट पर काफी मेहनत की थी। निक ने कहा, अब मैं कह सकता हूँ कि मिसेस शर्मा ने सच में इस मिशन पर बहुत मेहनत की है। देखना, जब आपके बच्चे होंगे तो उन्हें आप पर बहुत प्राउड फील होगा। मिस्टर मुखर्जी ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, शायद ये तो अभी कभी ना हो पाए कैप्टन निक। भले ही हमने जन्नत बाजार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी, लेकिन फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। जन्नत बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर कुछ भी हो सकता था। इस मिशन को लीड करने और जन्नत बाजार जाने वाली ऑफिसर की एक ही शर्त थी कि उन्हें एक सर्जरी से होकर गुजरना था। उस सर्जरी के बाद मिसेस शर्मा अब कभी भी माँ नहीं बन पाएंगी, तो शायद इनके बच्चों को कभी इन पर प्राउड फील करने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मिस्टर मुखर्जी तो वहां से चले गए, लेकिन प्रियल अपनी नजरें झुकाकर वहां बैठी थी और निक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। बस उसकी आंखों में आंसू थे और एकटक वो बस प्रियल को देखे जा रहा था।